ओम शांति। परम श्रद्धे आदरणीय जयंती दीदी जी, आप इंदौर से हैं, आपका हम सभी सभा में कर्तव्य के साथ स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आदरणीय दीदी जी, 45 वर्षों से भी अधिक शिव बाबा के इस यज्ञ में संपूर्ण समर्पण होकर के मानवता की सेवा कर रही हैं। आपको ज्ञान और योग में बहुत रुचि है और धारणा भी आपकी नंबर वन है, साथ ही सेवा में आप हमेशा अथक होती हैं। आपके चेहरे पर हमने कभी थकान नहीं देखी है। जो हमारा जूरिस्ट विंग है, इस जूरिस्ट विंग की आप जोनल कोऑर्डिनेटर हैं और आज साक्षी दृष्टा के ऊपर आप सभी की क्लास कराएंगी। आपका क्लास कराने का तरीका बड़ा सहज होता है, सरल होता है, जो हरेक को सहज ही समझ में आ जाता है और जैसे कि उस पॉइंट के दिल में छाप लग जाती है। आप बड़ी ही दृढ़ता पूर्वक किसी भी चीज को सबके सामने रखती हैं, ऐसी आदरणीय दीदी जी हम सबका क्लास कराएंगी साक्षी दृष्टा स्थिति के ऊपर। आदरणीय दीदी जी,
ओम शांति। वर्तमान जो समय चल रहा है, बिल्कुल अंतिम समय, और ये अंतिम समय हमें हर प्रकार से चेतावनी देता जा रहा है कि अब हमें आगे की ओर चलना है, जिसके लिए स्वयं परमात्मा आए हुए हैं, और ये सिर्फ हम बच्चों को ही पता है। इस अंतिम समय में अनेक प्रकार की परिस्थितियां, अनेक प्रकार की बातें, समस्याएं और व्यक्ति के मनोप्रवृत्ति में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है वो तो सभी को समझ में आ रहा है। पहले जो बातें हम कभी सुना नहीं करते थे, आज ऐसी अनेक बातें सुनाई दे रही है। परिवार में, आपसी व्यवहार में जो विघटन हो रहा है, ये इस अंतिम समय की निशानी है। आप देखते होंगे जब कोई भी कार्य शुरू होता है तो शुरुआत में सभी बड़े प्रेम से, रुचि से उस कार्य में लग जाते हैं, प्यार से चलते हैं, प्यार से रहते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे समय परिवर्तन होता जाता है तो आपसी प्यार बढ़ने लगता है। और आज आप देखोगे हर परिवार में कुछ न कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसी समस्याएं हैं। सुनाई देता है शादी हुई, आपस में मिलकर के आपसी व्यवहार में आपस में ही मिलजुल करके शादी की और थोड़े दिन के बाद देखो झगड़े शुरू हो गए। तो ये सब निशानी है अंतिम समय की। और बाबा ने तो अंतिम समय के लिए हम बच्चों को सारे ही पेपर आउट करवा दिए और अभी तक मुरली के माध्यम से बाबा समझाते भी जा रहे हैं कि ये होगा और ऐसी बातें आएंगी। अगर आप अपनी आत्मिक स्थिति को नहीं बनाते हो, अशरीरी होकर नहीं रहते हो, देही अभिमानी नहीं बने हो, तो ऐसी परिस्थितियों को आप संभाल नहीं पाओगे और आप फेल हो जाओगे। तो बाबा ने भी बता दिया है और जरूर अंतिम समय हलचल का तो होगा ही, इसीलिए हम सबको अब अपने ऊपर बहुत ध्यान देना है कि हमें अपनी स्थिति को मजबूत बनानी है। जैसे हम सब आज तक चलते आए, अब इस चाल चलन में हमें परिवर्तन करना होगा और वो परिवर्तन आध्यात्मिक शक्ति को लेकर करें तो जरूर हम अपने जीवन को ठीक रीति से चला पाएंगे और नहीं तो जीवन की गति अवरुद्ध हो जाएगी। और हम सुनते हैं ऐसे चलते चलते कई सुसाइड कर रहे हैं, तो ये समय बहुत नाजुक है और इस नाजुक समय में हमें अपनी स्थिति को सतु प्रधान बनाना है। बाबा ने हम बच्चों को जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान के आधार से सतु प्रधान स्थिति, सतु प्रधान स्थिति अर्थात जो हर बात को ठीक रीति से समझ सकेगा। सतु प्रधान मतलब वो पूरी तरह से नॉलेज को आत्मसात किया हुआ है और तब वो उन बातों को समझ पा रहा है कि आज ऐसी परिस्थिति में हमें कौन सा कदम उठाना है और किस प्रकार से आगे बढ़ना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। तो हमारी स्थिति सतु प्रधान हो जिसमें हम खुद अपने आप को समझ सके। कोई दूसरा आता है अगर वो परिस्थिति क्रिएट करता है तो उस परिस्थिति को हम संभाल सके अपनी ऊंची स्थिति के आधार से, ऐसा होना चाहिए। अगर हम उस परिस्थिति को संभाल नहीं सकते हैं तो आने वाला आगंतुक तो डिस्टर्ब है ही, हम खुद भी डिस्टर्ब हो जाएंगे और हम खुद भी कुछ नहीं कर पाएंगे और बल्कि विकराल परिस्थिति हो जाएगी। इसीलिए अपने आप को सतु प्रधान स्थिति में टिकाना है, संपूर्ण नॉलेज को अपने सामने रखना है। घर परिवार में अनेक प्रकार की बातें जो तनाव उत्पन्न करता है, जो अनेक प्रकार की बातों में प्रभाव डाल देता है, अनेक प्रकार की बातों में लगाव झुकाव में आते हैं, अब उस रीति से अगर हम चलेंगे तो हम साक्षी होकर के कोई भी परिस्थिति को संभाल नहीं पाएंगे। और परिस्थितियां तो बननी ही है, बाबा ने कहा हुआ है बातें आएंगी लेकिन बातों को संभालने वाले हम हैं। और हमें वो शिक्षा दी गई है कि जिससे हम इन बातों को, कलयुग में तो बातें होंगी ही होंगी और इन कलयुगी बातों को हम पूरी तरह से अपनी आध्यात्मिक शक्ति से मिटा सके। ये सब बातें बाबा ने दी हुई है। तो साक्षी दृष्टा जो स्थिति है बहुत ऊंची स्थिति है। कई प्रकार की बातें ऐसी होंगी जो हमें बिल्कुल हिला के रख देने वाली होंगी। कई प्रकार की ऐसी भी बातें होंगी जो थोड़ा बहुत हिला के ठीक भी हो जाया करेंगे, लेकिन हमारी अपनी स्थिति साक्षी होनी चाहिए। साक्षी अर्थात जिस चीज को हम देख रहे हैं उसमें लिप्त होकर नहीं कि घटना ऐसी घट रही है, आग लग गई है, चारों ओर हाहाकार मचा है और मैं उस हाहाकार को अनुभव कर रही हूँ, मैं उस परिस्थिति में लिप्त हो रही हूँ। उस रीति से अगर देखूंगी तो परिस्थिति में तो मैं खुद ही हिल जाऊंगी ना। लेकिन हमें ऐसी परिस्थिति को देखते हुए ये सोचना पड़ेगा कि ऐसे समय पर हमें क्या करना है। आग लगी है, या तो भाग जाओ या उसको बुझाने के लिए कुछ प्रयत्न करो। बाकी सिर्फ हाय हाय तौबा मचाने से तो कुछ फायदा नहीं होगा। तो हमें साक्षी होकर के उस परिस्थिति से अपने आप को डिटैच करके उस दृश्य को ऐसे देखना है जैसे कोई कहानी है, हमारे साथ नहीं है, या कुछ ऐसी घटना हमको सिर्फ सीन दिखाई दे रही है, ऐसे बिल्कुल उससे अलिप्त होकर के देखना, तब उसको कहेंगे हम साक्षी होकर देख रहे हैं। दिखाई तो दिया लेकिन हम साक्षी स्थिति में थे, इसीलिए हमें कुछ ऐसा लगा नहीं, लेकिन बातें थी तो बड़ी गंभीर। तो हमें इस तरह से अपने आप को चलाना है। अब साक्षी दृष्टा स्थिति हमारी तब बनेगी जब हम कुछ बातों पर विशेष ध्यान देंगे। सबसे पहली बात है कि हमारे अंदर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। आजकल छोटी छोटी बातों में तनाव हो जाता है, टेंशन, बस माथा खराब हो गया, उसने ऐसा बोल दिया, ये हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, फलाने ने ऐसा काम क्यों किया, और उसमें हम अपना दिमाग लगाते रहते हैं और तनाव में आते रहते हैं। तनाव अगर हो गया तो भी हम उस चीज को साक्षी होकर तो नहीं देख पाएंगे ना, उसमें तो हम हलचल में आ गए पूरी तरह से। तो तनाव को जिससे न हो, इसलिए हमें ज्ञान और योग को बहुत अपने सामने रखना है। ज्ञान को अपने सामने लाना है कि अगर ये बात हुई है तो ये होना था तब हुई है, और अगर हुई है तो उस बात से निकल जाओ, उस बात के अंदर प्रवेश नहीं करो, उस बात में अपना दिमाग नहीं लगाओ, तो हम तनाव से बच पाएंगे। तो तनाव को दूर करने के लिए भी हमारे अंदर ज्ञान की इतनी पराकाष्ठा हो कि इस बात को हमें नहीं लेना है अपने अंदर, भले कुछ भी हुआ है, कुछ चीज खराब हो गया है, कुछ बातें ऐसी हो गई हैं, किसी ने परिस्थिति क्रिएट कर दी है, कुछ भी हो गया हो, उसमें हम अलिप्त होकर उस बात को सोचे कि अब करना क्या है, तो हमें उसके लिए अपने ज्ञान के आधार से बातें मिलेंगी, और जहां ज्ञान और योग है वहां बाबा का सहयोग होता ही है, वहां हम तनाव मुक्त रहेंगे। तो हमें अपने तनाव को पहले देखना है कि कोई बात हमारे अंदर ऐसा प्रवेश तो नहीं कर गया जो हमारे दिमाग को खराब कर रहा है। कितनी बातें ऐसी होती है जो हमें तनाव में ला करके हमें गिरा देता है, इसीलिए इस बात से हमें बहुत अपनी संभाल करनी है। दूसरा है फिर स्वभाव। कईयों का स्वभाव होता है कुछ भी बातें दिखाई देंगी, कहीं कुछ भी हो रहा हो उसमें अपना दिमाग लगाना, उस बात को विशेष लेकर सोचना, वर्णन करना, चिंतन करना, कोई भी आए वो बातें बताना, उस बात को लेकर या तो एंजॉय करेंगे या उसका दुख उठाएंगे, उसके साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, और उस बात को लेकर वो खुद डिस्टर्ब होंगे, दूसरों को भी करेंगे, कुछ नहीं तो पीछे ही पड़ जाएंगे, अरे फलाने कैसा हो गया, तुम कुछ करो, जाओ देखो, माना किसी को चैन नहीं लेने देंगे। तो ये स्वभाव हमें साक्षी रखने नहीं देगा, हमारी स्थिति साक्षी दृष्टा की नहीं होगी, और जब हम साक्षी दृष्टा नहीं हो पाएंगे तो हम उस परिस्थिति में जिसके साथ घटना घटी वो तो गई, लेकिन हम खुद भी उलझ गए और खुद भी उलझ कर अपने को डिस्टर्ब कर लिए, अपने आप को भी हम हलचल में ले आए, हमें खुद को चैन नहीं मिला, खुद दुखी हो गए, खुद परेशान हो गए। इसीलिए हमें अपने स्वभाव को भी चेंज करना है। ये जो ज्ञान मिला, योग मिला, योग अगर हम इतना बाबा को याद करते हैं तो ये बातें ऑटोमेटिक चली जाएंगी, बाबा ने बताया हुआ है, ऐसी बातें होती हैं, या हुआ है किसी के साथ हुआ है, कोई बात नहीं, हम तो अपना काम करें। तो ज्ञान और योग बहुत चाहिए जो अपनी स्थिति को संभाल सके। इसके बाद है प्रभाव। हम कई बातों के प्रभाव में आते रहते हैं, कुछ भी बातें हुई, आज बहुत ठंडी है, आज बहुत गर्मी है, उसका भी बहुत, घड़ी घड़ी हम उसी बातों को लेकर चलेंगे, नहीं आज बहुत ठंडी है, आज सुबह अमृत वेला नहीं उठेंगे, उठे भी हैं तो चलो आज ठंडी बहुत है ना, रजाई ओढ़ के बैठ जाएंगे। योग में बैठे हैं, रजाई ओढ़ के बैठेंगे तो क्या करेंगे, सो जाएंगे ना, नींद आ जाएगी, प्रभाव। तो ऐसे अनेक प्रकार के प्रभाव में हम रहते हैं, और प्रभाव सिर्फ इतना ही नहीं, बड़ी बड़ी बातों का प्रभाव भी अपने ऊपर आता रहता है। वाइब्रेशन ऐसा बन जाता है जिसके प्रभाव का असर हमारे ऊपर होता रहता है, और वो प्रभाव भी हमें डिस्टर्ब करता है। इसके ऊपर एक कहानी प्रसिद्ध है। एक समय बुद्ध देव अपने शिष्यों को बोले कि जाओ आप लोग जाकर भिक्षा लेकर आओ। तो उनके शिष्य भिक्षा लेने चले गए। जो शिष्य भिक्षा लेने गए, जिसके घर में गए, तो वहां पहले जब मांग किया कि मुझे भिक्षा दे, तो एक बहन दरवाजा खोलती है और कहती है, आइए भोजन तो बनकर तैयार है, आप भोजन कर लीजिए और बाकी जो है हम आपको दे देंगे, जो आप अन्य शिष्यों को भी दे सकते हो, आप भिक्षा लेकर जा सकते हैं, अभी तो आप आइए और भोजन कर लीजिए। भरी दोपहर का समय था, धूप बहुत अच्छी थी। जब अंदर प्रवेश किया तो ठंडक महसूस हुई, तो शिष्य बैठे भोजन करने के लिए। उनके अंदर विचार चला कि बहुत दिन से अच्छा खाना नहीं खाया, जो भिक्षा में मिलता है थोड़ा बहुत वही खा लेता हूँ, अच्छा खाना अगर मिल जाए ऐसे परिवेश में, क्योंकि वातावरण बहुत अच्छा, वातावरण का तो प्रभाव होता है ना, तो अंदर ठंडक महसूस हुई, तो उसके मन में ये विचार आया कि अच्छा खाना अगर मिल जाए तो क्या बढ़िया हो जाए। अब ये जब सोचा तो सचमुच उस बहन ने बहुत अच्छा खाना उसके सामने लाकर परोसती है और उसको खिलाती है, और फिर बाकी जो है रख देती है कि आप ले जाइएगा। उसने खाना खाया, उसको बहुत अच्छा लगा कि मैंने जो सोचा था बिल्कुल वही मुझे मिला, खुश हो गया। भोजन करने के बाद दोपहर का समय था, उसके अंदर ये ख्याल हुआ कि जब इतना अच्छा खाना मिला, भरपेट खाया, थोड़ा आराम करने का भी अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो जैसे ही उसको अंदर संकल्प आया, तुरंत बहन कहती है कि बाहर इस समय धूप बहुत है, आप हमारे यहाँ पर विश्राम भी कर सकते हैं, आप विश्राम करके जा सकते हैं। तो उसने विश्राम का स्थान बता दिया, वो विश्राम करने चला गया, और उसको बहुत अंदर से ये लगा कि देखो जो मैं सोच रहा हूँ वो तो मुझे सब कुछ मिल रहा है, अब इतना अच्छा आराम का स्थान भी मिल गया। अब जब आराम करने का स्थान मिल गया तो उसके अंदर और भी कई इच्छाएं उत्पन्न हुई कि ऐसे समय पर मुझे ये भी कुछ आधुनिक चीजें भी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। अब जब वो इस प्रकार का विचार करने लगा तो वो बहन उसके पास आती है और कहती है, बंते आपने जो अभी संकल्प किया ये चीज तो मैं आपको यहाँ नहीं उपलब्ध करा सकती हूँ। तो एकदम हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, आपको पता है? तो बोले कि मैंने अपने संकल्प को इतना शांत किया हुआ है कि मैं हर एक के विचार को सुन सकती हूँ, किसी का भी विचार मैं सुन सकती हूँ। तो उसने कहा कि जो मैंने सोचा वो सब आपको सुनाई दिया? बोले हाँ। बोले मैंने जो सोचा था ये खाना मिले, ऐसा मिले, तो बोले हाँ मुझे सुनाई दिया और मैंने वही किया। तो उसके मन में आया कि मैंने जो इस बहन के प्रति जो कुछ बुरी बातें सोची थी इसने तो वो भी सुन लिया होगा। जैसे ही उसके मन में ये विचार आया वो उठकर तुरंत बाहर निकल आया, बाहर निकल गया और बुद्ध देव के पास जाकर कहता है कि मैं कल से भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा। तो तो बुद्धदेव कहते हैं ऐसा क्यों? तो उसने सारी घटना कह सुनाई। जब सारी घटना सुन लेते हैं तो वो कहते हैं बुद्धदेव जी कि आपको तो अब जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब आपको अपने विचारों को भी इतना संयत करना पड़ेगा, आप अपने विचारों को शांत कर दो। जैसे उसने कहा ना कि मैंने अपने विचारों को शांत किया हुआ था तभी मुझे दूसरों की आवाज सुनाई दी। आप भी अपने विचारों को चेक करो, आप क्या सोच रहे हो। आपके पास कोई ऐसा वैसा विचार ना हो जो कोई सुने तो उसको वो काम करना पड़े। आप अपने विचारों को सही बनाओ, समर्थ बनाओ, शक्तिशाली बनाओ, लेकिन विचार को चेक करो कि क्या सोच रहे हो, क्या ये सब चीज आपको चाहिए। आप अपने विचार को पूरी तरह से कंट्रोल करो, कल जब आप जाओगे तो आप बिल्कुल विचार शून्य होकर जाना, और आपको जाना ही पड़ेगा। तो बुद्धदेव ने उसको फिर से जाने के लिए कहा। अब वो अपने आप को एकदम शांत करने लग गया, शांत शांत, कोई विचार इधर उधर के नहीं, कोई विचार दुनियावी नहीं, कोई विचार इधर उधर के नहीं, बस अपने आप को शांत करता चला गया, अपने आप को चेक करता गया, मैं क्या सोच रहा हूं, मुझे ये नहीं सोचना है। अब जब वो पहुंचा दूसरे दिन फिर से उस बहन के पास, वहां भिक्षा लेने के लिए गया, फिर से बोला भिक्षा दे दो, तो बहन फिर दरवाजा खोल के बोलती है आइए भिक्षा तैयार है, आप भोजन कर लीजिए और बाकी आप ले जाइएगा। वही शब्द दोहराती है। वो जाकर बैठता है लेकिन अब बिल्कुल शांत, वो कुछ नहीं सोचता है, जो मिला जैसा मिला उसको स्वीकार किया, और उसके बाद वो विश्राम भी किया। बहन ने खुद बोला कि धूप है आप विश्राम कर लीजिए, उसने नहीं सोचा था। विश्राम करके जब वो चलने लगा तब बहन ने कहा कि आज आप पास हो गए। तो वो जो प्रभाव उसके ऊपर पड़ गया था वो प्रभाव से मुक्त हो गया आज। तो इस प्रकार वाइब्रेशन का प्रभाव देखो कितना पड़ता है। हम लोग आज जो कलयुग दुनिया में है, कलयुगी दुनिया में आप सबको भी पता होगा वातावरण बहुत अशुद्ध है। वातावरण में प्रभाव है विषय विकारों का, इसीलिए आप देखोगे चारों ओर वही बोलबाला है, चारों ओर का वाइब्रेशन वैसा ही दिखाई देता है। तो इन प्रभावों से मुक्त होने के लिए भी हमें अपने विचार को बहुत समर्थ, शक्तिशाली, पावरफुल और ज्ञान युक्त बनाना है। बाबा ने ये नहीं कहा कि तुम कुछ मत सोचो, सोचना है, क्या सोचना है वो तो बाबा ने सिखाया। हम जो मेडिटेशन करते हैं ये वही सोच ही तो है जिसको बाबा ने सिखाया, सकारात्मक चिंतन। और ये सकारात्मक चिंतन चारों ओर शांति का प्रभाव डालता है, चारों ओर का वातावरण शक्तिशाली बना देता है। आप सबको अनुभव होगा कि कभी क्लास चलता है, क्लास के अंदर योग चालू है, आप देखेंगे उस समय कोई बाहर से व्यक्ति आता है, नया व्यक्ति, और जब वो आकर बैठता है उसको बिल्कुल शांति महसूस होती है। नया व्यक्ति, अभी वो कुछ नहीं मालूम उसको, लेकिन वो अंदर आकर बैठता है उसको एकदम शांति फील होती है। और जब योग पूरा हो जाता है तो वो खुद कहता है बहुत अच्छा लगा, इतनी शांति, आज तक ऐसी शांति कभी मिला नहीं था, कभी महसूस नहीं किया था। तो ये क्या है? प्रभाव। और ये प्रभाव कैसे हुआ? हमारे विचार, हमारे संकल्प। तो बाबा यही तो सिखा रहे हैं कि तुम कैसे प्रभावशाली बनोगे, और उसके लिए बाबा ने ये सब बातें सिखाई हुई है। तो हम प्रभाव, जो ये बाहरी अशुद्ध प्रभाव से हम मुक्त बने हैं। तो प्रभाव अगर नहीं होगा अशुद्धता का, तो हम साक्षी दृष्टा हो सकेंगे, साक्षी होकर देख सकेंगे कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और उसकी बातें भी हम महसूस कर सकेंगे। जैसे कहा ना, हमको सुनाई देता है, ऐसे हम भी महसूस कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है लगाव। दुनिया में चारों ओर लगाव झुकाव भी बहुत है। लगाव के कारण भी हम साक्षी नहीं हो सकते हैं। आज घर परिवार में अनेक बातें ऐसी होती हैं जिसमें हम चाहकर भी अपने आप को उन परिस्थितियों से अलग नहीं कर पाते हैं। लगाव के कारण हम खुद भी दुखी होते हैं। परिवार में बच्चे होते हैं, किसी के साथ बहुत ज्यादा लगाव होता है, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, दूसरों की ओर ध्यान देना कम कर देते हैं, परिवार में बातें बिगड़ जाती हैं। तो ये सब जो होता है उसका कारण लगाव ही तो है, और लगाव के कारण भी हम परिस्थितियों को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। जो हमको करना है हम कर नहीं पाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दूंगी, सत्य घटना है। एक बार मैं एक पार्टी लेकर मधुबन आई हुई थी। पार्टी चली गई, हम लोग सब चले गए, क्लास चल रही थी, मुरली में ये पॉइंट आया। बाबा ने कहा कि बच्चे, अगर अंतिम समय पोतरा धोतरा भी याद आया तो तुम पास नहीं हो सकोगे। तो उस समय एक भाई खड़ा होकर कहता है कि बहन जी, ये चीज मेरे साथ हुई, ये घटना मेरे साथ घटी। पोतरा धोतरा का लगाव क्या होता है मैंने समझा। तो मैंने कहा क्या बात हुई, तो उसने क्लास में ही सुनाया कि मैं मधुबन जब जा रहा था, मैं अपनी तैयारी कर रहा था, तो मेरी 3 साल की पोती वो दौड़ती हुई आई और अपनी तुतली भाषा में कहती है, दादाजी दादाजी आप कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा, बेटा मैं भगवान के घर जा रहा हूँ, भगवान से मिलने जा रहा हूँ। तो वो बच्ची कहती है, अच्छा अच्छा, तो वहां दूर जाओगे? बोले हाँ, माउंट आबू जाऊंगा। तो बोलती है, अच्छा वहां से मेरे लिए एक फ्रॉक ले आना, छोटी सी बच्ची, मेरे लिए एक फ्रॉक ले आना, तुतली तुतली भाषा में उसने दादाजी को कह सुनाया। दादाजी अपनी तैयारी करके मधुबन आए। मधुबन आए तो जैसे पहले बाबा मिलन जब तक होता है तब तक पार्टी आती है, और वो अपना यहाँ कमरे अमरे में जाते हैं, फ्रेश होते हैं, जो भी है सब करते हैं। दादाजी गए, अब दादाजी को दुकान दिखाई दे रहा है कि बस अब दुकान जाऊं फ्रॉक खरीदूं। तो उनके साथ जो और भी थे लोग, उनसे पूछा कि आप लोग मार्केट कब जाओगे? तो बोला हाँ चलेंगे ना, चलेंगे चलेंगे, जब चलेंगे ना आपको बता देंगे, आप अभी तो तैयार हो जाओ, अभी हम क्लास में चलते हैं। क्लास किया, उनके साथ सब दूर घूमा फिरा, सब कुछ किया, हो गया। मधुबन में बाबा आए, बाबा का मिलन हो गया, बाबा मिलन हो गया, बाबा चले गए। दूसरे दिन से पार्टी का जाना शुरू होता है। अब जब जाने का दिन आया तो सब तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें से एक ने कहा, आपको मार्केट चलना था ना, चलिए आज तो मार्केट चलते हैं, कुछ खरीदारी करके फिर गाड़ी में चढ़ेंगे। तो बोले हाँ हाँ चलो चलो। तो उनके साथ वो मार्केट गए। मार्केट से जब वो बच्ची के लिए फ्रॉक खरीद के मधुबन के गेट पर आए, तब उनको लगा, आ हा हा, ये तो स्वर्ग है। अभी तक स्वर्ग नहीं मालूम पड़ा था, अभी मालूम पड़ा जाने के दिन, जिस दिन वो बस जाने वाले हैं, आह ये तो स्वर्ग है। अब वो इधर देखे उधर देखे, आह खाना खाया, वाह वाह ये तो अमृत है। अब जहां जाए उसका दिल भर रहा है और उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहा है। बाबा मिलन भी हो गया, बाबा भी मिलके चले गए, मैंने बाबा को तो देखा ही नहीं, अनुभव ही नहीं कर पाया। अब उनको फील हो रहा है कि हाय हाय, इस पोती के फ्रॉक ने मेरी बुद्धि को कहां ले दिया था। उसकी बुद्धि फ्रॉक में फंसी हुई थी, लगाओ उस बच्ची से इतना लगाओ कि उस लगाव के कारण वो कुछ भी नहीं अनुभव कर पाए। बोले बाबा ने कहा ना पोत्रा धोत्रा याद आएगा, बाबा भूल गया था। मैं मधु बन गया लेकिन मैं किसी को कह नहीं सकता कि बाबा क्या है और मैंने क्या देखा। वो तो बस आने में जो थोड़ा बहुत समय बचा था, उस थोड़े समय में मैंने मधुबन को देखा एक झलक। बाकी जो इतना दिन रहा, चार पांच दिन का कोई अनुभव मेरे पास नहीं है, मैंने कुछ भी अनुभव नहीं किया। और वो कहता रहा कि मैं मधुबन गया लेकिन मधुबन का कुछ भी मुझे नहीं मिला। तो ये भी लगाव, ऐसे कई लगाव हम घर परिवार में रखते हैं, अपने संबंधियों से, बाल बच्चों से, परिवार से, रिश्ते नातों से। ये लगाव हमारी बुद्धि को अपने पास बांध के रख देता है। ज्ञान हमें इस लगाव से छुड़ाता है। ज्ञान कहता है अगर लगाव रखना है तो बाबा से रखो, मोह रखना है बाबा से रखो, क्योंकि बाबा हमें सब कुछ देने वाला है, ये कोई कुछ नहीं देने वाला। प्राप्ति को अपने सामने रखो तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो देखो ज्ञान और योग हमारी स्थिति को कितना ऊंचा बना देती है और हम कहां इधर उधर भटकते रहते हैं। ऐसे ही हमारा झुकाव किसी किसी में होता है और उस किसी किसी में झुकाव के कारण भी हम साक्षी नहीं हो पाते, हम परिस्थिति में फेल हो जाते हैं और उस परिस्थिति के वश में होकर हम सब कुछ भूल जाते हैं। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है वो कुछ भी याद नहीं रहता है। तो इसीलिए ये जो पांच बातें हैं जो हमें पूरे दिन की दिनचर्या में कहीं ना कहीं लागू होता रहता है, इन बातों से हमें मुक्त होना चाहिए अपना ज्ञान अपना योग के आधार से। जितना हम योग युक्त रहेंगे, जितनी बुद्धि बाबा से लगी रहेगी, उतना हम इन सब बातों से छूटे हुए रहेंगे और जितनी बुद्धि इन सब बातों में लगी रहेगी उतना हम परिस्थिति के वश होकर हिल जाएंगे, गिर जाएंगे, फेल हो जाएंगे। फिर हम जो अब बाबा के बने हैं, बाबा हमें नई दुनिया के लिए तैयारी कर रहा है, हम बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा के साथ संबंध जोड़ा है, बाबा के आज्ञा अनुसार हमें चलना है, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो ये हमारी सजा नहीं होगी। बाबा की आज्ञा हम नहीं मान रहे हैं, बाबा को याद नहीं कर रहे हैं तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी अवज्ञा हुई ना। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम परिस्थिति को पास कर सकते हैं और हम साक्षी दृष्टा बन सकते हैं। ये अंतिम पेपर तो हमें पास होना ही पड़ेगा ना, कि पास नहीं होना है, हम सबको पास होकर नई दुनिया में जाना है। और ये संसार की अवस्थाएं दिन प्रतिदिन तो गिरती ही जाएगी, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी आएंगी, कहां किस प्रकार की बातें होंगी, कहां किस प्रकार की बातें होंगी, संबंधियों के साथ अटैचमेंट कितना है आज, इन सब बातों से हमें मुक्त होना पड़ेगा। हमें डिटैच होने का अभ्यास करना है। तो इसीलिए हमें हमारी स्थिति को सतो प्रधान बनाना पड़ेगा। सतो प्रधान स्थिति माना फुल नॉलेज, नॉलेज फुल, और नॉलेज फुल होंगे तो पावरफुल होंगे ही होंगे। अब सतो प्रधान स्थिति के साथ हमें त्रिकालदर्शी भी बनना है। त्रिकालदर्शी माना, जो भी करो आदि मध्य अंत तीनों बातों को देखते हुए करो, एक बात को देखते हुए नहीं। जैसे हम नहीं प्रश्न उठाते हैं, ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, उसने ऐसा क्यों किया, मैंने उसके साथ इतना अच्छा किया लेकिन वो मेरे साथ ऐसा क्यों, ये जो हम प्रश्न उठाते हैं ये हम वर्तमान को देखकर उठाते हैं। हमें ये सोचना पड़ेगा पहले कुछ ऐसी बातें हुई, चलो इस जन्म में नहीं लेकिन किसी और जन्म में। और ये तो हम सबको पता है कि हम जो यहाँ आए हुए हैं, हम जो आज जहाँ भी रहते हैं, जिसके साथ रहते हैं, हम सब कर्म बंधन से जुड़े हुए हैं, कर्म का हिसाब किताब एक दूसरे के साथ है। और आज इस अंतिम समय में हम सभी को अपने अपने कर्म का हिसाब किताब चुकाना है, चुकाना है। तो हो सकता है आज नहीं तो किसी अन्य समय में, किसी अन्य जन्म में हमने इसके साथ ऐसा किया होगा, हमने इसके साथ बुरा किया इसलिए आज इसने मेरे साथ बुरा किया। लेकिन हम प्रश्न उठाकर खुद को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसको भी कर रहे हैं, बाकी परिवार को भी कर रहे हैं, सब डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो ये भी तो पाप है ना। ये काम हमको नहीं करना है, हमें तो सबकी सेवा करनी है, सबको सुख देना है, दुख तो किसी को देना ही नहीं है, किसी को डिस्टर्ब हमें करना ही नहीं है, बल्कि जो डिस्टर्ब है उनको ठीक करना है। बाबा ने तो हमें ये काम दिया हुआ है ना, तो हमें त्रिकालदर्शी बनकर के आदि मध्य अंत को सोचकर समझकर फिर आगे बढ़ना है, फिर हमें व्यवहार में आना है, और तब हमारे अंदर से सबके लिए दुआएं निकलेंगी, सबके लिए दुआएं होंगी, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, क्योंकि हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, हमें हमारा हिसाब किताब चुकाना है, पूर्ण होकर के हमें जाना है, कुछ भी अधूरा लेकर के नहीं जाना है। इसीलिए हमें इन बातों को बहुत गहराई से त्रिकालदर्शी बनकर समझ करके करना है, और साथ साथ अभी जो समय है, अंतिम समय, हमें और क्या करना है, भगवान को अपना साथी बना लो। भगवान ने खुद कहा है कि मैं तुम्हारे लिए आया हूं, तुम मुझे यूज करो, जब भी ऐसी कोई बात हो तो बुलाओ, खुदा दोस्त आ जाओ, वो खुद आएगा और वो खुद सहयोग देगा। और ये वो समय है जिस समय को कहा जाता है, गीता का एपिसोड चल रहा है, महाभारत काल जो बनाया हुआ है, जो कहानी हम पढ़ते हैं, वही तो समय चल रहा है, और हम सब पांडव भगवान के साथ हैं, भगवान हमारा साथी बना हुआ है, खुद आया है, खुद आया है, खुद आकर के हमारा दोस्त बना है, हमारा संबंधी बना है, और हमें हर परिस्थितियों से पास होने के लिए वो खुद बता रहा है कि तुम ऐसे ऐसे करो, तुम मुझे अपना साथी बनाओ, सबका साथ छोड़ दो, देहधारी से, देह के संबंधियों से अपना बुद्धि योग निकालो और मेरे साथ जोड़ दो। ये जो उसने बताया हुआ है, अगर इस प्रमाण हम चलते हैं तो वो सचमुच हमारे लिए है, और कई बार अनुभव करते हैं कि कैसे वो हमारा साथ देता है और हमें पता भी नहीं पड़ता है। जब वो हमारा साथ देता है हमें ऐसी परिस्थिति में, जब परिस्थिति पूरी हो जाती है, जो समस्या आई हुई थी वो समस्या खत्म हो जाती है, तब लगता है अरे ये कौन आया था, कौन ये काम करके गया, अरे वो आया था अचानक और आकर करके चला गया, अरे मैंने तो उसको देखा भी नहीं ठीक से, मैंने तो उसको थैंक्स भी नहीं कहा, अरे मैंने उसका कभी उसे पूछा भी नहीं, उसका कॉन्टेक्ट नंबर तो लेते, कुछ नहीं किया। कौन आया था और पता नहीं कौन आया था, माना बाबा ने उसको भेजा, हमारे लिए भेजा और हमारा काम करके दिया, क्योंकि मैंने उस घड़ी बाबा को याद किया था। हाँ, ये है कि उस घड़ी, जिस घड़ी वो घटना घटित हुई, उसी घड़ी मुझे उनको याद करना है। इसके ऊपर एक दृष्टांत है, आप लोगों ने तो सबने महाभारत की कहानी तो सुनी होगी। महाभारत में जब लड़ाइयां पूरी हो गई तो एक समय पांचों पांडव, द्रौपदी और श्री कृष्ण बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे, वो महाभारत काल में कैसे लड़ाई हुई और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये आपस में चर्चाएं कर रहे थे। उस चर्चा के बीच में द्रौपदी श्री कृष्ण को कहती है कि केशव, आप मेरा भाई भी हो, मेरे लिए भगवान हो, देवता हो, आप मेरा सखा भी हो, आप सच्चा साथी भी हो, सब कुछ हो। आप जो कुछ भी आज हुआ है, आज इस लड़ाई में जो हम जीत पाए हैं, वो भी आपने ही किया है। आप करते तो सब कुछ हो लेकिन देरी करते हो। तो कृष्ण ने कहा, द्रौपदी देरी, मैंने देरी की थी? कब किया मैंने देरी? तो बोले, सोचो, जिस दिन चीरहरण हो रहा था उस दिन तुमने देर नहीं की? तो बोले, द्रौपदी मैंने देर किया? तुम सोचो, जब ये घटना हुई और दुशासन तुम्हारा बाल पकड़कर सभा के बीच में लाया, तुम तो धृतराष्ट्र के पास गई, उनसे मिन्नतें करने लगी, तुम भीष्म पितामह के पास गई, तुम कृपाचार्य के पास गई, तुम द्रोणाचार्य के पास गई, तुम अपने पांचों पति जो हारे हुए नीचे मुंडी करके बैठे थे उनके पास गई, मिन्नतें करने लगी। जब तुमने कहा हे केशव और हाथ छोड़ दिया, अपना पल्लू छोड़ दिया, तब मैं आया। तुमने जिस घड़ी मुझे बुलाया मैं उस घड़ी आया। मैंने तो देर की नहीं थी, देर तो तुमने की। अगर तुम पहले ही मर्तबा मुझे याद कर लिए होते तो ये घटना घटती ही नहीं। सही बात है, हम सब ऐसा ही करते हैं। जब कोई बात आती है, इसको फोन लगाओ, उसको फोन लगाओ, वो बड़ा व्यक्ति है, अरे वो पड़ोसी ही तो अच्छा है, वही कर सकता है, चलो गाड़ी लेकर खुद चलते हैं, फलाने के पास जाए, ये करे वो करे, हम दौड़ भाग करते, हजारों लोगों से मिलते हैं, जब कोई कुछ नहीं कर पाता है तब लास्ट में कहते हैं बाबा, तब बाबा करेगा करेगा, फिर बोलते हैं बाबा तो सुनता ही नहीं, बाबा ने तो सुना ही नहीं, मैंने तो बहुत बुलाया बाबा को, बाबा आ जाओ, पर बाबा तो आया ही नहीं, बाबा तो मेरा काम किया ही नहीं। किस घड़ी वो करता है, उस घड़ी, जिस घड़ी ये बात आई उस घड़ी होना चाहिए। अपने यहां पर एक ऐसा ही उदाहरण मैंने सुना था, किसी एक जगह पर अपने दो भाई, ज्ञानी भाई, गांव में सेवा करने गए थे। दोनों ज्ञानी भाई गांव में गए थे सेवा करने, वो उनके गांव से दूसरे गांव तक जाने में ट्रेन लेनी पड़ती है, लोकल ट्रेन, और वो लोकल ट्रेन से जाना आना करते हैं, और ट्रेन में चढ़ के वो जाते थे और वहां वो अपना सेवा कार्य करके और लौटते थे। तो एक बार वो दोनों भाई गए थे, सेवा करके जब लौट रहे थे तो देखा उनका पानी का जो बोतल था वो खाली था, तो सोचा अब मैं भर लेता हूं। अब जो गाड़ियां, लोकल गाड़ियां जो चलती हैं, वो तो ऐसे ही होते हैं, वो बेचारे उतरे और इतने देर में गाड़ी चल पड़ी, चल पड़ी। जो दूसरा था उसने सोचा, अरे वो आया नहीं, वो तो वहां रह गया, वो देखने लगा इधर कि कहां है वो। इतनी देर में उसने भी देखा कि अरे ट्रेन तो चल पड़ी, वो दौड़ता भागता आने लगा, बोतल एक हाथ में और वो दौड़ता भागता आने लगा। आते आते ट्रेन के हैंडल को पकड़ा, अंदर जाने लगा, तो दूसरा जो भाई था वो भी उसको खींचने लगा, लेकिन पता नहीं कुछ खींचा और तान में कुछ क्या हुआ, भीड़ भी थी गाड़ी में, तो क्या हुआ, दोनों के हाथ छूट गए गाड़ी से, दोनों के, जो खड़ा था ट्रेन में वो उसकी भी हाथ छूटी, और जो पकड़ा था ट्रेन को, पकड़ लिया था चलती हुई गाड़ी को, उसका भी हाथ छूटा, तो दोनों ही ना गिरे। गिरने से एक भाई चिल्लाया, बा बा बोल के बहुत जोर से चिल्लाया, दोनों गिरे। अब क्या हुआ, दोनों गिरे तो प्लेटफॉर्म और उसके रेल लाइन के बीच में जो थोड़ी सी जगह थी, उसने जिसने बाबा बोला था वो किनारे लग गया, और जो नहीं बोला था वो ट्रेन के पटरी में आ गया, वो दो टुकड़ा हो गया और वो भाई बच गया। जब भोग लगाया गया तो बताया कि बाबा जिसने बोला वो बच गया। तो ये मैंने सुना था किसी से कि ऐसी घटना हुई थी, तो माना जिस घड़ी घटना घटे उस घड़ी मुझे बाबा याद आए, और ये बहुत आसान बात नहीं है कि हाँ मैं उस घड़ी बाबा को याद कर लूंगी। वही कर सकेगा जो हमेशा हमेशा बाबा की याद में रहता है, जो बाबा को भूलता नहीं है, वही अंत में भी बाबा को याद करेगा और वो पास हो जाएगा। बाकी जो हमेशा बाबा को याद नहीं करता है, कभी करता है कभी नहीं करता है, भूल जाता है, उसके साथ घटना हो सकती है। तो इसीलिए बाबा हमें हर परिस्थिति में साक्षी होना सिखाया। कुछ भी हो हमें डर नहीं लगना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। डर और घबराहट तब होगी जब हमारे अंदर योग की कमी होगी। अगर हम योग युक्त हैं, पावरफुल हैं, नॉलेजफुल हैं, तो हमारे अंदर ये बातें भी नहीं होंगी और हम साक्षी दृष्टा बन करके सारी घटनाओं को पास कर सकेंगे। तो ये तीन बातें साक्षी दृष्टा में बहुत जरूरी है। पहला तो अपनी सत्व प्रधान स्थिति, दूसरा है त्रिकालदर्शी बन करके हर बात को समझते हुए इन पांचों बातों से मुक्त होना है, तनाव, स्वभाव, प्रभाव, लगाव, झुकाव, और लास्ट में बाबा को साथी बना लो। बिगर बाबा को साथी बनाए हम साक्षी नहीं हो सकते, और साक्षी दृष्टा बन जाएंगे तो हम पास हो जाएंगे और हम जो चाहते हैं वो सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ओम शांति।
हमें करते उनकी पलकों में हम खुश नसीब उनको पाते, हम खुश नसीब उनको पाते, जिंदगी हमारी जाती है, भगवान
भगवान।